Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सरस्वती सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों को ये स्थान आज भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए दिया है, उनका धन्यवाद करते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं आज इस कार्यक्रम में। बोलिए हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा,
हरे रामा,
राम रामा, हरे हरे। तो आप सब लोग जन्माष्टमी क्या है ये जानते हैं। जन्म का मतलब जन्म, अष्टमी का मतलब आठवां दिन। तो जो महीना आने वाला है, कल क्या था, कल पूर्णिमा थी, बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन का दिन था कल। इसको रक्षाबंधन पूर्णिमा कहते हैं, बलराम पूर्णिमा कहते हैं। रक्षा का मतलब है हमारी प्रोटेक्शन। तो कौन करेगा हमारी प्रोटेक्शन, जो सबसे बलशाली होगा, और सबसे बलशाली कौन है, बलराम जी। तो बलराम जी के प्रकट्य आविर्भाव अथवा जन्म के तिथि के दिन ये सुरक्षा का, रक्षा का कार्यक्रम रखा गया है हमारे वैदिक संस्कृति ने। क्योंकि बलराम जी सबको सुरक्षा देते हैं, सबको प्रोटेक्शन देते हैं, सबको रक्षा करते हैं, वही बलशाली हैं। इसलिए बलराम पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का दिन है। पहले बलराम जी आए, रक्षाबंधन का दिन बाद में मनाया गया। तो रक्षा तो बलराम जी की कृपा से प्राप्त होगी। ये कल बलराम जी के वहां से हमको पंडित जी ने रक्षा बांधा, तो बलराम के हाथ के चरणों की रक्षा हमारी रक्षा करेगी। किसी ने मुझे कहा 50 साल पहले मॉरिशस में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाया जाता था। सत्य है। और गत 10 साल से कम आयरलैंड में जन्माष्टमी इस्कान के द्वारा सबसे प्रथम नेशनल फेस्टिवल है, जिसको एम्बेसी लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। तो आज एक ऐसा पावन दिन है, आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन पे आज से 57 साल पहले, 57 ईयर्स, आज से 57 साल पहले श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्तिवेदान स्वामी शीला प्रभुपाद 70 साल पूरे करने में केवल 12-15 दिन थे, 70 ईयर्स। भारत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के फोरकास्ट को, भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए कि दुनिया के हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, एवरी विलेज एंड टाउन, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होगा और लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा को प्राप्त करेंगे। और कल युग में 10,000 साल तक भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बहुत सरल, आसान और परफेक्ट, सबको परफेक्शन मिलेगी केवल भगवान के नाम जपने से। तो ये किसकी भविष्यवाणी थी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बहुत दयालु के रूप में, भक्त के भाव में, मात्र राधा रानी के भाव में, जो माँ का भाव है, उस भाव में प्रकट होकर पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, सारी दुनिया के नगर देश ग्रामों के लिए सनातन वैदिक धर्म के मूल शास्त्र भगवत गीता और भागवत और रामायण आदि के प्रचार का ये कार्य का भविष्यवाणी की थी। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त निज परिकर एसोसिएट एक बार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को, बहुत कॉन्फिडेंस शिष्यों को कहा कि मैं तो गौलोक में भगवान के संग में था, लेकिन कृष्ण ने कहा जाओ। मैंने बोला मैं भौतिक जगत में जाके क्या करूंगा। बोला जाओ शास्त्रों को लिखो, उस भाषा में लिखो जो पूरी दुनिया जानती है। तो प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, उसको अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए, ताकि पूरी दुनिया श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण कर सके, वर्णन कर सके, दर्शन कर सके। तो प्रभुपाद जी आज के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, तीन पीढ़ियों, थ्री जनरेशन, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, इन दो पीढ़ियों की, इन दो जनरेशन की तैयारी को लेकर और 40 साल तक, 40 इयर्स तक प्रभुपाद ने भारत में तैयारी की। ही मेड दी प्रिपरेशन। हम सुबह कथा में बता रहे थे कि तीन पीढ़ियां, जब थ्री जनरेशन भगवान की भक्ति करते हैं, तब दुनिया के लिए कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलता है। गंगा को धरती पे लाने के लिए अंशुमान, दिलीप, भागीरथ तीन पीढ़ियों ने परिश्रम किया, तब गंगा आई और दुनिया का उद्धार किया। कुंती, द्रौपदी, उत्तरा तीन पीढ़ियों की भगवत भक्ति से परीक्षित का प्रकट्य हुआ और भागवत इस संसार को, दर्शन भागवत का हुआ, भागवत मिली। तो तीन तीन पीढ़ियों का, तो ये तीन जनरेशन, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत स्वामी, तब आज के दिन प्रभुपाद जी कलकत्ता से, जो उनका जन्म स्थान, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां उन्होंने जवानी बिताई, जहां उन्होंने अच्छे दिन देखे अपने जीवन के, आज के दिन 65 में अकेले एक परिचित आदमी के साथ, एक जस्ट नॉन पर्सन, नॉट फ्रेंड, नॉट डिसाइपल, नॉट रिलेटिव, उसने प्रभुपाद को जलतूता में आज के दिन विदा किया। और प्रभुपाद आज के दिन पानी के जहाज जलदूता में चढ़े। और ये दिन दुनिया पूरी के लिए बहुत फॉर्चुनेट डे है कि आज के दिन प्रभुपाद ने ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया वृंदावन को छोड़कर और दुनिया को वृंदावन देने का, कृष्ण के धाम को फिजिकली छोड़ के और कृष्ण की महिमा को पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। ही टुक ए बिग रिस्क। जन्माष्टमी जहाज के ऊपर, ये जन्माष्टमी जो आएगी 12 दिन के बाद, अभी 8 दिन में आने वाली है, 8 दिन भी के 7 दिन बचे हैं, ये प्रभुपाद ने जहाज के ऊपर मनाई। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो आइलैंड के अंदर आप इतने 300-400 लोग जन्माष्टमी के उत्सव में बड़े उत्साह के साथ आए हो, ये आज से 50 साल से ऊपर 57 साल पहले एक व्यक्ति के बलिदान, त्याग, वैराग्य, गुरु के शब्दों के ऊपर निष्ठा और श्रीमद् भागवत के संदेश के ऊपर विश्वास का रिजल्ट है, परिणाम है। प्रभुपाद के साथ एक छाता था, एक छोटी सी बैग में 2-3 जोड़े धोती कुर्ता के थे और पंफलेट कुछ छपवाए थे, उसमें लिखा था भागवत, श्रीमद् भागवतम, इंडिया का मैसेज, पीस का और वेलबींग का दुनिया के लिए। और श्रीमद् भागवत का केवल पहले स्कंद के 200 कापियां ट्रंक के अंदर ये साथ ले गए थे और अपने साथ पढ़ने के लिए बंगाली में चैतन्य चरितमृत था जो उन्होंने जहाज के ऊपर पढ़ा। आज उसके परिणाम के रूप में आप ये जानते हैं कि जन्माष्टमी क्या है और आपके यहाँ बच्चे गीता के श्लोक यहाँ आके बोलते हैं। आपने कई प्रोग्राम में देखे हैं कि बच्चे गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, छोटे से बच्चे आपके। ये सारा एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति, वन पर्सन, उसके सेक्रीफाइस, उसकी सेक्रीफाइस, उसकी डिटर्मिनेशन, उसका भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर विश्वास, उसका श्रीमद् भागवत के संदेश के ऊपर विश्वास इतना दृढ़ था कि पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक एक रिवोल्यूशन कृष्ण भावना का स्थापित हुआ। और कहां? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जहां कोई भारत मूल का व्यक्ति नहीं रहता, वहां सब वेस्टर्न लोग हैं, जिनको प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले सन्यासी कोई जहाज में चढ़ के पानी के समुद्र को पार करके मलेश देशों में नहीं जाया करते थे, क्योंकि वहां जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने जाकर वहां धर्म को साइंस के रूप में उन लोगों के जीवन के चरित्र को बदल दिया। आप भाग्यशाली हो कि उस एक व्यक्ति की तपस्या के फल में आज हर दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ। हम एक 15 दिन पहले रशिया में थे और रशिया के अंदर आपकी तरह साड़ी पहने हुए, तिलक लगाए हुए, जहां हम गए भक्त मिलते हैं, कीर्तन करते हुए मिलते हैं, सबके घर में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद हमको खिलाते हैं। वो प्रसाद पकाना, उनको भोजन पकाना, दाल चावल रोटी पका के खिलाते हैं, ये रशिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये मिलना संभव है। और जहां किसी को कोई भाषा नहीं आती है, उनकी अपनी भाषा आती है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का रोड के ऊपर कीर्तन करते हैं। मंदिर बने हुए हैं, बहुत सुंदर राधा गोविंद देव जी का मंदिर देखा, बहुत सुंदर गौर निताय के मंदिर देखे, हमने तो 7-8 देखे, लेकिन बहुत सारे हैं। तो आप दुनिया में अभी कहीं भी चले जाओ, प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो जिन्होंने सुमति मुरार जी ने जिन्होंने उनको फ्री में पानी के जहाज का टिकट दिया था, उसने कहा महाराज आप खाओगे क्या अमेरिका में, सब लोग मांस खाते हैं, आप क्या खाओगे? और प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे कहीं कुछ नहीं मिला तो मैं सिर्फ पटाटो बॉयल करके खा लूंगा, नहीं तो उपवास रख लूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने गुरु के शब्दों को सत्य करूंगा। तो आज के दिन अगर हमारे को प्रभुपाद के इस दृढ़ विश्वास का, फर्म डिटर्मिनेशन का, कि कृष्ण के नाम में क्या शक्ति है, भागवत कितना चमत्कारी, कितना आनंद देने वाला शास्त्र है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, 1-2-4 कोई उसका 1% भी, 1% भी प्रभुपाद के दृढ़ संकल्प का, फर्म डिटर्मिनेशन का, इतना भी हमारे अंदर लेस मात्र कृपा हो जाए तो ये छोटे से आपके मॉरिशस को हम कृष्ण भावना बहुत सुंदर एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो दुनिया आके देखेगी कि ये देवता लोग यहाँ रह रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, आयन प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके कहा ये कि मैं आपको सुखी बनाने आया हूं। सुख कहाँ है? सुख वैकुंठ में है, जहां कोई परेशानी नहीं, जहां कोई दुख नहीं। वैकुंठ का मतलब जहां कोई कुंठ नहीं, कुंठ का मतलब परेशानी दुख तकलीफ नहीं है, उसको वैकुंठ बोलते हैं। और मैं यहां, प्रभुपाद ने कहा, आपको सुखी बनाने आया हूं, मैं आपको देने के लिए आया हूं। इस दुनिया में जो देता है ना, वही दुनिया में सुखी होता है, लेने वाला बेचारा हमेशा भिखारी होता है, परेशान होता है। तो दुनिया में देना सीखो। और आज के दिन के विषय में हम आपको ये कहेंगे, अगर भगवान नहीं आए स्वयं इस धरती के ऊपर, तो हम विश्वास कैसे करें कि भगवान है? अगर भगवान नहीं आए और अपने परिचय नहीं दे, तो हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं? जैसे कोई आपके आइलैंड के ऊपर कोई बहुत बड़ा धनी आदमी है, कोई कह सकता है इसके पास 10 मिलियन है, 50, 100,000 मिलियन है, लेकिन ये तो आप अनुमान लगा रहे हो, ये जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। लेकिन वही आदमी आके कहे कि मेरे पास इतना है, तो हमको विश्वास करेंगे ना? तो भगवान कौन है ये तो दुनिया कह रही है, भगवान पता नहीं, भगवान शायद होगा कि नहीं होगा, होगा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। लेकिन भगवान जब सामने आके कहे कि मैं भगवान हूं और दिखाए कि मैं कैसे भगवान हूं, क्यों भगवान हूं, तब भगवान के ऊपर लोगों को विश्वास होगा। तो भगवान का अवतार लेना इस धरती के लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब जब भी, ये श्लोक तो सबको आता है, भारत मूलवासियों को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्योत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। ये किसने श्लोक बोला है? किसने बोला है? भगवान श्री कृष्ण ने। और गीता को किसने लिखा है? व्यास देव ने महाभारत को बोला है। मालूम है किसने लिखा है? गणेश ने लिखा है। और गणेश कोई विघ्न वाली बात नहीं लिखते हैं, उसका नाम ही गणेश का क्या है? विघ्न नाशक। तो क्यों लोग मूर्ख कहते हैं कि गीता घर में होने से घर में झगड़ा होगा? जब गणेश ने लिखा है तो विघ्न तो नहीं होना चाहिए ना उसमें, फिर गणेश कैसे लिखेगा जिसमें विघ्न पड़े? विघ्न नाश के लिए तो गणेश की पूजा करते हैं, और ये तो गणेश स्वयं ने बैठ के अपने हाथ से लिखी है। ये श्रीराज उस स्थान को देख के आए हैं जहां ये गीता लिखी गई। वो गणेश जी का गुफा में गणेश जी बैठते थे और ऊपर व्यास जी बैठते थे जहां हम गए थे, और वहां बैठ के ये महाभारत और श्रीमद् भागवत का संग जो है रचना हुई है उस स्थान के ऊपर। तो पहले तो ये सिद्धांत लोगों को बताओ कि जो चीज गणेश ने लिखी है उसके अंदर बाधा कैसे पड़ेगा? रिद्धि सिद्धि का वो दाता है, वो बुद्धि का देवता है, बुद्धि देता है गणेश, और तभी तो व्यास देव ने उस बुद्धिमान से ये काम लिया। भगवान का होता है वेद व्यास जी, और गणेश जी को वो भागवत महाभारत लिखने के लिए कहा, उसमें गीता लिखी गई है, तो उसमें कैसे बाधा पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती है। ये जब मुस्लिम और क्रिश्चियन का शासन था भारत में, 1000 साल तक मोहम्मदीन शासन रहा, 200 साल तक अंग्रेज का शासन रहा, तब उन्होंने ये गलत धारणाएं हमारे शास्त्र के विषय में प्रोपेगंडा की, ताकि हमारे लोग अपने रामायण भागवत गीता को छोड़ के उनके शास्त्रों को पढ़ें। ये उन लोगों ने इस तरीके से प्रचार कराया कुछ पंडितों को खरीद कर। इसलिए शास्त्र को यथारूप समझने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त के संग की आवश्यकता है, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद को इस दुनिया को भागवत के माध्यम से संग देने का व्यवस्था किया। आज जिसके घर में भागवत है, मानो प्रभुपाद जी आपके घर में बैठे हैं। जब भागवत को उठाओगे तो प्रभुपाद जी आपसे बात करेंगे। उन्होंने भागवत की टीका अपने स्वयं रातें जागकर लिखी है। रात को 12 बजे बैठते थे, सुबह 4 बजे तक वो भागवत के पूर्व आचार्यों के जो भाव है उन सबको ठीक तरह संकीर्त करते थे। तो भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती से चले गए तो अपने आप को भागवत में स्थापित किया, अपने आप को भागवत के रूप में प्रकट किया। भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भागवत का मतलब जस्ट लाइक भगवान, इट्स जस्ट लाइक भगवान, सेम एज भगवान। तो उस भागवत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन है। उस भागवत में श्री कृष्ण भगवान के अवतार का वर्णन है और लिखा है। पहले तो ये लोग पूछते हैं कि भगवान केवल भारत में क्यों अवतार लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अवतार नहीं लेते, अमेरिका में अवतार नहीं लेते, चाइना में अवतार नहीं लेते। तो आपका क्या उत्तर है? छह साल से मैं मॉरिशस में आ रहा हूं। अभी संजय आपके घर में प्रसाद लेके आ रहा हूं, आपके घर में प्रसाद लेके आ रहा हूं ना, लेकिन छह साल में मैं आ रहा हूं यहां। आप मेरे किसी के घर में आया? आया नहीं? क्यों क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि बुलाया नहीं। तो कोई दूसरे देश वाला भगवान को बुलाता ही नहीं है तो वहां क्यों जाएंगे? बहुत सीधी सी बात है भाई, जो बुलाएगा वहां आएगा ना। तो भारत के अंदर ऋषि साधु मुनि रहते हैं, वो भगवान को प्रार्थना करके बुलाते हैं, इसलिए भगवान वहां आते हैं। बाहर वाले भगवान को जानते ही नहीं है तो बुलाएंगे क्या? तो भगवान को बुलाने के लिए पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी को लेकर, और भगवान ने दर्शन नहीं दिया। आप ये समझ लो कि कैसे टेलीफोन के ऊपर बोल दिया कि चिंता मत करो मैं आऊंगा। मिले नहीं, भगवान का मिलना ब्रह्मा जी के लिए भी सुलभ नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा मैं आऊंगा, और आप लोग मुझसे पहले यदुवंश में आप जाके जन्म लो मेरे काम में सहयोग देने के लिए। तो ये सारे देवता यदुवंश में जाके जन्म लेने लगे, और ये कथा सुनने की इच्छा थी परीक्षित महाराज को। 7 दिन में उसको शराप था, तक्षक सांप डसेगा और प्राण निकल जाएंगे। 5 दिन पूरे होने वाले थे, दशम स्कंद शुरू होते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण जिसने मेरे पितामह अर्जुन की रक्षा करके महाभारत में विजयी बनाया, श्री कृष्ण जिसने मेरी माँ के गर्भ में ब्रह्म अस्त्र से रक्षा की, उसके जन्म और लीला के बारे में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके सुनाइए। सुखदेव महाराज ने कहा 4 दिन से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ जलपान कर लो और फिर कथा सुनो। परीक्षित महाराज कहते हैं इस पानी की प्यास के कारण मैंने तो ब्राह्मण का अपराध किया, तब तो ये श्राप मिला है, अब मेरे को पानी की भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मुख से ये कथा अमृत जो मैं सुन रहा हूँ, ये जो भागवत अमृत सुन रहा हूँ, बस इसको चलने दीजिए, यही मेरे लिए भोजन है, यही मेरे लिए जल पान है। जब हमारी भगवान की कथा सुनने में इतनी उत्कंठा होगी, इतनी ईगरनेस होगी, इतनी यहाँ तो प्रसाद की गाड़ी आई है? कथा शुरू होने से भगवान की तरफ ध्यान कम होता है, गाड़ी की तरफ ध्यान ज्यादा होता है, लेकिन भागवत सुनने की पहली जो पहली रिक्वायरमेंट है कि जलपान को भूल के कथा अमृत को कानों से पान करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहां तो जब जो करछी देगड़े में खड़क करती है तब भक्तों का आगमन होता है, जैसे घंटी बजती है आरती की, ऐसे वो भी आरती है प्रसाद की खट खट, तब बहुत भक्तों की जमट इकट्ठा होता है। आप भाग्यशाली हो कि कथा के लिए इकट्ठे हुए हो, प्रायः लोग प्रसाद वाली आरती में इकट्ठे होते हैं, कथा वाली आरती में बहुत कम लोग होते हैं। तो कृष्ण कथा के रहस्य को समझने के लिए पहले ईगरनेस होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, जलपान को भूल कर प्रभुपाद की तरह विश्वास होना चाहिए। कुछ खाने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भागवत मेरे साथ है, कृष्ण मां हरे कृष्ण मंत्र मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं, सब व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। इतना विश्वास होगा तो कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे, और जिस दिन कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे उस दिन हमारे लिए जन्माष्टमी होगी। कृष्ण का जन्म वसुदेव के हृदय में हुआ, भागवत में लिखा है वासुदेव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर आविशेष अंश भागेन मन अनंक दुम दुभि। भागवत में श्लोक लिखा है सर्व आत्मा सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहने वाले, सब जिनको प्रेम करते हैं वो भगवान जो अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, अपने सारे अंशों के साथ अपने सारे ज्ञान वैराग्य ऑपुलेंस के साथ सारे भव के साथ षड ऐश्वर्य के साथ वसुदेव के मन में प्रकट हुए, और वसुदेव चमकने लगा, और वसुदेव को कोई देख नहीं सकता था जैसे सूर्य को कोई नहीं देख सकता है ऐसे। और फिर दूसरे श्लोक में लिखा है जगन मंगलम, जगत का मंगल करने वाला, जगत के लिए जो शुभ है, अच्युत अंशम, जो अच्युत अपने अंश के साथ बलराम जी आदि के साथ, देव रूपी देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव के हृदय से देव रूपी देवकी के हृदय में मन में प्रवेश हुए। बोला कैसे, जैसे ईस्ट में चंद्रमा उगता है, तो क्या चंद्रमा उगता है, कल पूर्णिमा का चंद्र था ना, चांद देखा था ना, तो चांद पूर्णिमा का निकला, किसी ने कहा कि चंद्र चांद का जन्म हुआ है, चांद का जन्म हुआ था क्या, नहीं, चांद प्रकट हुआ अपने आप। ऐसे देवकी के मन में भगवान अपने आप प्रकट हुए, योगियों की तरह ध्यान नहीं करना पड़ा, अपने आप आके प्रकट हो गए देवकी के मन में भगवान। इसलिए यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये गर्भ सामान्य स्त्री पुरुष के बच्चे पैदा करने की तरह नहीं था, ये तो मन में भगवान का प्रकट्य हुआ था, और वसुदेव के मन में भगवान आया, और मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और उसके हृदय में भगवान को स्थापित कर दिया, और फिर देवकी भी प्रकाशमान हो गई, और कंस उसको देख के कहता है लगता है कि मुझे मारने वाला देवकी के हृदय में आ गया है, क्योंकि देवकी कभी भी इतनी मुस्कुराती हुई चमकती हुई नहीं दिखती थी। ये शुचि समितम, ये बड़ी पवित्र मुस्कुराहट है, इसका मतलब है भगवान इसके हृदय में आएंगे। वो हरि है और मेरे को मारेगा, लेकिन इस वक्त मैं इस स्त्री को मारूंगा, वो गर्भवती है तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान के अवतार लेने तक मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो जब किसी के हृदय में भगवान आ जाते हैं ना, तो कंस जैसा क्रूर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका भी मन बदल जाता है। और कंस के जाने के बाद ब्रह्मा, शंकर, नारद, इंद्र, व्यास आदि ऋषि कंस के जेल खाने में आके भगवान को देवकी के उदर में देख के प्रणाम करने लगे। प्रार्थना की है शंकर और ब्रह्मा जी ने, नारद आदि ने, गर्भ में आए हुए भगवान श्री कृष्ण की, और जाते हुए कहा ब्रह्मा जी ने, देवकी तेरे गर्भ के अंदर पर ब्रह्म भगवान साक्षात परिपूर्ण श्री कृष्ण आए हैं, अब तुम चिंता मत करो, अब कंस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और देवता चले गए। तब देवकी और वसुदेव के सामने चार हाथ, सर के ऊपर मुकुट, गले में वैजंती माला, कौत्सव मणि, श्री वत्स का चिन्ह, भगवान प्रकट हुए। कोई डिलीवरी हुई इसका वर्णन नहीं है। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, देख के देवकी और वसुदेव आश्चर्यजनित हो गए, और देव वसुदेव प्रार्थना करने लगे। अब साक्षात भगवान है, देवकी प्रार्थना करने लगी, और फिर देवकी ने कहा, मुझे डर लगता है आपको ऐसे देख के, कहीं कंस ना आपको देख ले, आप छोटे बन जाइए बच्चे, मैं आपको कैसे छुपा लूं। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, कहा तुम तीन जन्म में मुझे बेटा मांग रही थी, तो प्रश्नी थी, ये शत्रुपा था, पहले तेरा मैं बेटा प्रश्नी गर्भ हुआ, तपस्या में तुमने मेरे जैसा बेटा मांगा, मेरे जैसा कोई और नहीं होता है, मेरे वचन को सत करने के लिए मैं तीन बार आया, दूसरे जन्म में तुम अदिति और कश्यप थे, तब मैं वामन देव बन के आया उपेंद्र, आज वसुदेव और देवकी, मैं तुम्हारे सामने वसुदेव कृष्ण प्रकट हो रहा हूँ, अब मेरी माँ आपको डर लगता है, तो मेरे पिता आप मुझे यहाँ से उठाओ, नंद गोकुल में ले चलो, यशोदा के पास मुझे छोड़ो, वहाँ एक कन्या का जन्म लाइन हुआ है, उस कन्या को लेके यहाँ आओ। और ये आदेश देके भगवान श्री कृष्ण छोटे शिशु की तरह अपने आप को, जैसे ड्रामे में आदमी ड्रेस बदलता है, ऐसे सो गए। और ये जन्मदिन 10 अगस्त को होगा, तब आप जन्माष्टमी मनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जाने का समय हुआ। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको भगवत गीता, भागवत को इस तरीके से समझना चाहिए, भगवान के जन्म को, और बाहर लोगों की कही कही सुनी बातों के ऊपर, भगवान के ऊपर आक्षेप, आरोप अथवा उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो अपराध है, जानते भी नहीं है हम। भगवान राम का प्रकट है भी ऐसा।